नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 1,25,000 से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा चुनाव को विश्व की अब तक की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया बताया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी बन गया है। फिलहाल भारत में 1,25,000 पंजीकृत स्टार्टअप से 12,00,000 से अधिक युवा सीधे तौर पर जुड़े हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश की युवा शक्ति की अदम्य भावना से अभूतपूर्व ढंग से फल फूल रही है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की रूपरेखा पर काम कर रहा है।
50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं।
श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने नूतन विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया है और उन्हें फंडिंग से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बनने का मार्ग चुना है।
देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना। देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि पेटेंट आवेदन तेजी से भरने के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि जीईएम पोर्टल पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल कारोबार हुआ है, जो बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व छोटे शहर कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब कृषि, वस्त्र, मेडिसिन, परिवहन, अंतरिक्ष, योग और आयुर्वेद में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में स्टार्टअप महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश भी मौजूद थे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनावों के पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीट, राजस्थान की 12 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीट और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च होगी। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यहां नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा तथा करौली, धौलपुर विधानसभा सीट शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इन जिलों में बिना अनुमति के राजनीतिक जुलूस, यात्राएं और रैली नहीं की जा सकेंगी। नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 लोग रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। इस बीच राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने 15 जबकि कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दोनों पार्टियों में शेष सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के लिए मंथन जारी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही असम में पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। असम में परिसीमन प्रक्रिया के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। इस चरण में कई वरिष्ठ राजनेताओं के अपनी किस्मत आजमाने की संभावना है। इनमें अन्य नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने आज विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। राज्य में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 2 जून को होगी, जबकि लोकसभा की दोनों सीटों के लिए वोटों की गिनती आम चुनाव की मतगणना के साथ ही 4 जून को होगी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग ने जिला चुनाव अधिकारी के समन्वय से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनावों के दौरान मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सुबह जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधीश ए कुलोथुंगन की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि मतदाता बिना किसी भय के मतदान कर सकें।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वो बिहार में हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य में कुल 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा जारी है। अगले 4-5 दिन के भीतर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस द्वारा कल केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद श्री रिजिजू को कल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। श्री रिजिजू वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह तेलंगाना के उप राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। समारोह का आयोजन हैदराबाद में राजभवन में किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे ने उन्हें शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जाएं? टेली मानस के 14416 पर संपर्क करें। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेली मानस के 14416 पर कॉल करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने 18वीं लोकसभा के चुनाव को विश्व की अब तक की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया बताया है। कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में वर्चुअल बयान में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत में आज 14 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं, जो विश्व के किसी भी भाग में जमीनी स्तर पर सबसे अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र शुरू होते ही युवाओं को मताधिकार देकर भारत ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य युवाओं का है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और शुचिता के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
In the diverse tapestry of India, we find a compelling narrative of democracy intertwined with both technological progress and a concerted effort to make elections more inclusive, a story that holds promise for future generations. By extending the right to vote to a younger demographic beginning at the age of 18, we acknowledge that the future belongs to our youth and their voices should be integral to any democratic conversation.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोपके से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। आयकर विभाग पश्चिम बंगाल में कोलकाता के न्यू अलीपुर स्थित स्वरूप बिस्वास के घर पर छापेमारी कर रहा है। स्वरूप बिस्वास राज्य के मंत्री अरूप बिस्वास के भाई हैं। इनकम टैक्स की टीम कोलकाता के बेहाला, पोर्नोश्री और अन्य इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। वो ईडन रियल एस्टेट और मल्टीकॉन रियल एस्टेट के अधिकारियों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन माओवादी केंद्र ने कल बालुवातार स्थित पीएम के आधिकारिक आवास पर सोने की तस्करी मामले में पार्टी के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मेहरा की गिरफ्तारी पर चर्चा की। हालांकि मेहरा से पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगने का निर्णय नहीं लिया जा सका। नेपाल पुलिस ने सीपीएन माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मेहरा को 18 मार्च को कपिलवस्तु से गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरोज के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाला साल समाज में एकता को बढ़ाएगा। श्री मोदी ने सभी के लिए खुशी और कल्याण की कामना की। मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार में मध्यम बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कहा कि कल तक झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
ओडिशा के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने वर्षा के दौरान बिजली गिरने से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 1-4-4-1-6 पर संपर्क करें। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 1-4-4-1-6 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें।
ये आकाशवाणी है। COP28 के अध्यक्ष डॉ सुल्तान अल जाबेर को प्रतिष्ठित सेरावीक लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्हें ह्यूस्टन में SNP ग्लोबल कॉन्फ्रेंस द्वारा सेरावीक में सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक आम सहमति बनाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने आपराधिक कार्रवाई में छूट के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। श्री ट्रंप की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्य के लिए आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट प्राप्त है। अगली कार्यवाही 25 अप्रैल को होगी। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे। इससे पहले पुरुष एकल क्वालिफायर में सतीश कुमार करुणाकरण ने अल सल्वाडोर के उरियल केंजुरा को हराया, जबकि समीर वर्मा ने ब्राजील के को एल्हो डी ओलिवेरा को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 1,25,000 से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा चुनाव को विश्व की अब तक की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया बताया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।